भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शन्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः तदीयन्तस्तैः अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 13। मेरे पीछे दोहराइए, यह पारमेष्ट्यं धिष्णां अधिष्ठान न कांचन प्रत्युतिष्ठेत इति ब्रयो धर्मं ते न परम विदुः। यह पारमेष्ट्यं धिष्णां अधिष्ठान न कंचन प्रयुच्चिच्छिष्ट इति ब्रियु धर्मं तेना परं विदुः। यह पारमेष्टयं धिष्णां अधिष्ठान न कंचन प्रत्युतिश्रेष्ठ इति ब्रयो धर्मं तेना परं विदुः। यह पारमेष्टयं धिष्णं अधिष्ठन्न कंचन प्रत्युतिश्रेष्ठ इति ब्रयो धर्मं तेना परं विदुः। यह जो भी पारमेष्टयम् राजसी दशनम सिंहासन पर अधितिष्ठन आसीन ना नहीं कंचन कोई भी प्रत्युति तिष्ठ पहले उठना चाहिए इति इस प्रकार ब्रिहु जो ऐसा कहते हैं धर्मम धर्मादेश ते वे ना नहीं परम अत्याधिक विदुह जानते हैं। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए, यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रसंग के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करे। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग ये नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए, भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कितनी भी समुन्नत क्यों न हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब लोग चतुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हों। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में और तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गो रक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज इस प्रणाली को नहीं मानता, उसे पंचम श्रेणी का मानना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्मम तेना परम विदुः, ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है न ही श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। यदि कोई ये कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वे श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। रूपा जी इसके परपट के अंदर जो है एग्जाम्पल देते हैं भगवान श्री कृष्ण का और नारद का, नारद जी का, कि जब नारद जी प्रवेश करते हैं तो भगवान उठ के स्वागत सत्कार के लिए खड़े हो गए। अब इसको कहिएगा साधारण भाषा में प्रोटोकॉल। आज के युग में देखें तो प्रोटोकॉल क्या है? अगर किसी दूसरे कंट्री का होम मिनिस्टर आता है तो उसको होम मिनिस्टर ही एंटरटेन करेगा, प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है, राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। और अगर राष्ट्रपति आता है तो कौन रिसीव करता? राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति नहीं जाता। ये चीज क्या शो करती है? आप कंट्रास्ट देखिएगा, ये शो करती है ईगो, अहंकार, मैं पोजीशन पे हूं, आई एम ऑन दैट पोजीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बना दिया है, ऐसे कन्वर्ट कर दिया है जिसमें श्रेष्ठ धार्मिक नियम नहीं। धार्मिक जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप धार्मिक हैं, आप धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो धार्मिक शब्द जो है किस यूपी से बना है, उसका बेस क्या है, उसका जड़ कहां है, किस धातु से बना है? धर्म से बना, अर्थात जो धर्म से कनेक्टेड है, जिसका धर्म से संबंध है, वो धार्मिक है। और धर्म क्या है? धर्म बना है धी धातु से, जिसका अर्थ है जिसको धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है। और धारण करने क्या योग्य है? साधारण भाषा में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को क्या धारण करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए जो है नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है, उसे क्या धारण करना चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मतलब नौकरी करता है तो नौकरी में जो काम कर रहा है वो करे, नौकरी नहीं कर रहा है तो, बड़ी सिंपल बात है। धारण करने योग्य अगर साधारण भाषा में कहेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करनीय है क्या अकरणीय है, क्या सत है क्या असत है। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट, आपको दोनों में भेद करना है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान कहां से मिलेगा? हु विल गिव दिस नॉलेज? इसका ज्ञान कि मुझे क्या करना, क्या धारण करना चाहिए। जैसे आपने छोटी भाषा में कहा, साधारण भाषा की बात करता हूं, आप किसी ज्योतिषी के पास गए, बोले साहब मेरा बुरा समय चल रहा है, कौन सा रत्न धारण करूं? मतलब आप उसको धारण कर रहे हैं, तो अब वो आपको बताता है कि आपको नीलम करना चाहिए, आपको पन्ना करना चाहिए, आपको पुखराज करना वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह हम कह रहे हैं कि आपको जीवन के अंदर कौन से नियम धारण करने चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, कौन से कायदे कानून धारण करने चाहिए जो धारण करने योग्य हैं। तो धारण करने योग्य क्या है? जो धर्म है। और धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। अब प्रेम कैसे प्राप्त होता है? हाउ डू यू गेट लव? भगवान का प्रेम जो है, मुझे धर्म पे तो मार्ग पे चलना है, मुझे भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है, तो प्रेम कैसे प्राप्त होता है? एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, थोड़ा आपका मूड बदलेगा। एक घर के अंदर सास और बहू में बहुत झगड़ा, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। सास चाहती है बहू मर जाए, बहू चाहती है सास मर जाए। सासें बुरा नहीं माने कृपया, और बहुएं भी बुरा नहीं माने, ठीक है। शहर में एक महात्मा जी आए जिनके पास हर समस्या का हल है, एवरी पॉसिबल उनके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस हैं। सास की घुटनों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, कमर में दर्द था, बेचारी पहुंचने में देरी हो गई। बहू यंग थी, फटाफट भाग दौड़ के महात्मा जी के पास पहुंच गई। महात्मा जी ने पूछा, बेटा कैसे आई हो? रोने लग गए। क्या हुआ? मैं अपनी सास से बहुत दुखी हूं, ये बताओ चाहती क्या हो? बोली, मैं तो चाहती हूं सास से छुटकारा हो जाए। भाई छुटकारा तभी होगा जब तुम्हारी सास मर जाएगी तो। बोले, हाँ महात्मा जी मैं यही चाहती हूं मेरी सास मर जाए, ना रहे, मैं बड़ा दुखी हूं उससे, बड़ा कष्ट, बहुत परेशानी है, बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। बोले, अच्छा ये लो जड़ी बूटी, ये जाके सास को दूध में डाल के पिला देना, तुम्हारी सास मर जाएगी। तो बहू बड़ी खुश हुई, बड़े सस्ते में काम हो गया एकदम, है फटाफट जड़ी बूटी मिल गई, सास के छुटकारा। उसने कहा कि अगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा तुम्हारी सास का और कोई दुश्मन है जिससे न बनती हो, जिससे वैर हो, स्वभाव न मिलता हो? कहते नहीं, मेरे अलावा तो और कोई नहीं है। बोले, फिर तो पुलिस आएगी, तुमको जेल हो जाएगी, फांसी लग जाएगी, शक तुम्हीं पे जाएगा। अरे महात्मा जी, आपके पास सारे सोल्यूशन है, सारी समस्याओं का हल है, इसका भी हल बताओ। बोले, इसका हल यह है कि जड़ी बूटी वापस करो और दूसरी ले जाओ। बोले, दूसरी की क्या क्वालिटी है? बोले, दूसरी जो है स्लो पॉइजन है, धीमा जहर, ये एक साल में मारेगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो बहू खुश हो गई, चलो एक साल, पर एक साल झेलना पड़ेगा सास को। बोली, मरता क्या नहीं करता, झेल लूंगी, तो मरना तो है ही उसको। फिर बोला, तुम्हारे घर में किसी और के प्रति तो है रिच वेयर, फिर भी थोड़ा सा शक तो तुम पे जा ही सकता है, ज्यादा ना जाए, थोड़ा तो तुम पे जा ही सकता है। बोले, ये बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या हल है? कहते, इसका हल ये है कि तुम एक साल के लिए नाटक करना, खूब नाटक करना। बोले, क्या नाटक करना? बोले सास की हां में हां मिलाना, सास की सेवा करना, सास के आगे पीछे घूमना, सास के कहे को टालना नहीं है, जो सास कहे वो करना, बस ऐसा लगे कि तुम ही तुम हो सास के लिए और कोई है ही नहीं। तो तुमसे जो है सास को किसी को शक नहीं होगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। ये भी कर लूंगी, अब छुटकारा पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये भी कर लूंगी। महात्मा जी जड़ी बूटी ली और घर चली गई और दूध में घोल घोल के पिलानी शुरू कर दी। एक साल बीता, लौट के आई महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने आती पहचाना, आओ बेटा आओ, अच्छा ये बताओ तुमने चिता की तैयारी कर ली, सबको इन्फॉर्म कर दिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, तुम्हारी सास आज शाम को मरने वाली, आखिरी दिन है ना आज, एक साल हो गया है, एक साल का वायदा था, एक साल की कमिटमेंट थी, आज तुम्हारी सास मरने वाली है, तो तुम्हारी तरफ से सारी तैयारी है? तो रोने लग गई। बोली अब क्यों रो रही हो, पहले रो रही थी कि मेरी सास मर जाए, अब क्यों रो रही हो, तो मरने वाली फिर क्यों रो रही हो? कहते जी मेरी सास को बचा लो। बोले कभी मारने की बात करती हो, कभी बचाने की बात करती हो, क्या आफत डाल लगी तुमने, क्यों बचा लें उसको, मैं तो उसको जहर दे दिया था, मर जाएगी वो। बोली नहीं, मेरी सास मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पे जान निछावर है उसकी, जैसा मैं कहती हूं वैसा करती है, मेरी सास को नहीं मरना चाहिए, मेरी सास को बचा दो। तो रोते रोते जो है उसने जब ये दुहार लगाई तो महात्मा जी कहने लगे अच्छा अभी तेरी बात तो माननी पड़ेगी, चलो तेरी सास नहीं मरेगी, तू जा निश्चिंत हो जा, मैंने तो तुझे जो है ताकत की जड़ी बूटी दी थी, तेरी सास ठीक फिट है ना? बोली अभी तक तू फिट है। इसे ये स्टोरी क्या बताती है कि सास का बहू के प्रति प्रेम डेवलप हुआ, एक बड़ा ग्रेट मैसेज है इसके अंदर। हम भगवान से प्रेम करते हैं, क्या भगवान हमसे प्रेम करते हैं? रेसिप्रोकेट करना है ना, यूनिलेटरल लव है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, पर क्या जो है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, क्या भगवान मेरे से प्रेम करते हैं? डज ही लव मी? यहां क्या है कि बहू तो सास से प्रेम कर रही है, पर सास भी बहू से प्रेम करना शुरू कर दिया है। जब भगवान हमसे प्रेम करेंगे, और ये प्रेम कैसे डेवलप हुआ, प्रेम डेवलप करने का सिस्टम क्या था, इट वॉज सेवा। सो धर्म क्या है? धर्म है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? सेवा से। और सेवा का अर्थ क्या है? व्हाट डज सेवा मीन? भगवान के आदेश का पालन। तो धार्मिक नियम क्या है? जो नियम भगवान ने बनाए हैं उनका पालन करना, वो धार्मिक नियम है। अपनी तरफ से नियम नहीं बनाने हैं, अपनी तरफ से उनका पालन नहीं करना है, पालन वही करना है जो नियम भगवान ने हम लोगों के लिए बनाए हैं। अब भगवान ने नियम क्या, किस तरह बनाए, क्या सिस्टम बनाया नियम बनाने का? भगवान ने हमें वैदिक शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्थान पे हमें बातें समझाई हैं कि किस तरह से हमें धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। वो धार्मिक नियम का ज्ञान हमारे पास किस प्रकार से आता है, सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि वो ज्ञान हमें श्रुति अर्थात सुनने के द्वारा प्राप्त होता है। और सुनना किससे है? जो भगवान की परंपरा में आता है, डिसिप्लिक सक्सेशन अर्थात प्रमाणिक माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमको जो है ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ज्ञान हमको बताएगा कि वो नियम क्या है जिनको हमें अपने जीवन में लगाना है। आज के युग के अंदर प्रोटोकॉल, जो धार्मिक प्रोटोकॉल है, जो भगवान के बताया हुआ नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनके हिसाब से प्रोटोकॉल नहीं। उसका नुकसान क्या है कि जब हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, जब हम भगवान के द्वारा बताए गए नियमों पर नहीं चलते, तो क्या होता है? अव्यवस्था हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, जो कि आज हम देख रहे हैं। यहां जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके अंदर कि भगवान कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। धार्मिक शिष्टाचार एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने यहां पर कि जब नारद जी आते हैं सभा के अंदर तो भगवान कृष्ण जो है उनको सम्मान देने के लिए कि ये ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको जो है सम्मान देना चाहिए, ये महान भक्त हैं। क्या हम लोग इस तरह से सम्मान देते हैं? डू वी डू इट? क्या हम लोग जो है दूसरे को ऐसे सम्मान देते हैं? हमारी जिससे बनती नहीं है ना उसको हम हरे कृष्णा भी नहीं करते, बगल से निकल जाते, उसकी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि हमारी ईगो हमारे आड़े आ जाती है कि कहीं हरे कृष्णा करने से मैं घिस ना जाऊं, मेरी जीवा ना खराब हो जाए, परेशान ना हो जाऊं, सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, जबरदस्ती हरे कृष्णा किए जा रहे हैं, मैं तो इससे करता नहीं, ये मेरे से क्यों किए जा रहा है, मैं तो नहीं करता पर ये मेरे से क्यों कर रहा, इसका जरूर कुछ लालच होगा, जरूर कुछ मतलब होगा, जरूर कुछ कारण होगा कि मुझे हरे कृष्णा कर रहा है। एक सिंपल प्रोटोकॉल, एक सिंपल धार्मिक शिष्टाचार कि हमें एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए, हम वो भी करने को तैयार नहीं होते, कारण कि हमारा मन अशुद्ध, हमारे मन के अंदर मैल है, कंटामिनेशन है, गंदगी भरी हुई है। जब हम एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन के अंदर गंदगी है, हम उसको जो है एक जो धार्मिक शिष्टाचार है, सिंपल शिष्टाचार है कि हमें उसे कम से कम अगर मुलाकात हुई है, मंदिर में आया है, भक्त है, तो हम उसको जो है हरे कृष्णा भी नहीं करते, तो व्हाट डज इट शो? क्या मतलब है इसका? अब सुनिए दूसरी कहानी, अरे कहानी सुनाते हैं आपको। और आपका एक बहुत गहरा मित्र है, बहुत प्यारा मित्र है आपका, इतना प्यारा है कि आप उस पर जान छिड़कते हो और वो आप पे जान छिड़कता। एक व्यक्ति से आपका वैर हो गया या उससे दुश्मनी हो गई या उसने आपका को बुरा कर दिया कि आपको उसके प्रति एक विरोध हो गया कि मुझे इससे बदला लेना है। आपने प्लान किया कि आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसे मार दूंगा, मैं आई किल हिम, इस कदर वैर आ गया है, इतना भारी भरकम आपके मन के अंदर द्वेष भर गया है कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, यू वॉन्ट टू किल हिम। आपने जो है आग जलाने का सामान लिया, मशाल ली, मिट्टी का तेल लिया, पेट्रोल लिया, उसकी झोपड़ी में जा पहुंचे कि आज इसकी झोपड़ी फूंक दूंगा, झोपड़ी समेत ये जल जाएगा, हिल डाई। वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपने क्या देखा कि जो आपका बहुत गहरा मित्र है वो अंदर उपस्थित है, झोपड़ी में वो आपके वैरी के साथ, आपके दुश्मन के साथ विराजमान है। अब आपका रिएक्शन क्या है? व्हाट डू यू डू? झोपड़ी जलाएंगे या छोड़ के आ जाएंगे? झोपड़ी जलाएंगे तो मित्र को भी हर्ट होगा, ही विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व, तो क्या करेंगे आप? छोड़ के आ जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? जो आपका वैरी है अगर आप उसको कहें कि झोपड़ी के अंदर दो लोग विराजमान हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, परमात्मा कौन है? आपके सुहृद, आपके हृदय में भी विराजमान है, आपके मित्र हैं, बहुत गहन मित्र हैं आपके, उन्होंने आपका संग नहीं छोड़ा, हमने चाहे उनको भुला दिया हो, परंतु वो हर योनि में, हर शरीर में हमारे साथ विद्यमान है। वो परमात्मा जो कि हमारे सुहृद हैं, जो हमारे बड़े गहरे मित्र हैं, वो हमारा जो वैरी जिससे हमने वैर पाल लिया है उसके हृदय में भी विराजमान है। तो अगर मेरे मन में कंटेमिनेशन है, मेरे मन में गंदगी है, उसके प्रति वैर है, दुर्भाव है, बुरा भाव है, तो वो भाव जो है उसके हृदय में बैठे परमात्मा अर्थात जो मेरे हृदय में बैठे परमात्मा उनको भी हर्ट कर रहा। तो क्या ये होना चाहिए? क्या मुझे जो स्टैंडर्ड भगवान ने दिया हुआ प्रोटोकॉल है कि हरेक प्राणी से आपको प्रेम करना है, जो हरेक प्राणी से प्रेम करता है, क्या मैं जो है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं उसके ऊपर चल रहा हूं? क्या मैं ये कार्य कर रहा हूं? नहीं कर रहा। देखिए भगवान स्पष्ट कहते हैं यहां पर, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वह मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को हरे कृष्णा भी नहीं करते हैं तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? इज इट पॉसिबल? स्टेटमेंट है भगवान की, 11वां अध्याय 55वां श्लोक पढ़ के देख लीजिएगा कि जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव, 5 कंडीशन दी है भगवान ने, 5 कंडीशंस। पहली है मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। दूसरी है मत परमा, मुझे परम मानते हुए। तीसरी है मत भक्त, मेरा ही भक्त बन के। ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको करनी है, जो कि विधि है, और 2 है निषेध। 1 है संग वर्जिता, कि आपको अभक्तों का संग नहीं करना, और दूसरा है आपको निर्वैर सर्वभूतेषु, प्रत्येक प्राणी से वैर नहीं करना, निर्वैर रहना है। क्या ये सारी 5 कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं? जब हमारे अंदर कंटेमिनेशन है, हमारा मन साफ नहीं है, हम बेसिक धार्मिक नियम का पालन नहीं कर रहे, जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स। यहां तो भगवान ने आदर्श दिखाया है बहुत बड़ा, राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना है, सारे के सारे पांडवों को कौरवों को सेवाएं सौंपी जा चुकी हैं, अब भगवान कृष्ण पधारे हैं तो उनके लिए क्या कार्य है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपके लिए सिंहासन है, आप सिंहासन में बैठिए, वहां विराजमान होइए, आप पूजनीय हैं, हमें आपका स्वागत सत्कार करना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं सभा में आया हूं, मैं भी वैसे ही कार्य करूंगा जैसे तुम लोग कर रहे हो। बड़ी मान मनोबल के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज फेल हो गए कि नहीं मान रहे भगवान, तो क्या करेंगे आप? कि मैं जो तुम्हारे यज्ञ के अंदर ब्राह्मण आ रहे हैं उनके चरणों को पखारूंगा, फीट वेदिंग करूंगा, फुट वेदिंग करूंगा, पैर धोऊंगा उनके। वो कार्य भगवान क्या दिखाते हैं कि देयर इज अ प्रोटोकॉल, एक राजसूय यज्ञ हो रहा है। मैं चाहे भगवान हूं, मेरे लिए सिंहासन विराजमान है, सब कुछ है, बट आई हैव टू परफॉर्म सम सेवा। तो भगवान अपने लिए त्याग, त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण है, भगवान अपने लिए एक सेवा चूज करते हैं, स्वयं एक नियम का पालन करते हैं। क्या हम उस प्रोटोकॉल पे चलते हैं? क्या हम कार्य करते हैं? हम कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में आया हूं और मैंने प्रसाद ग्रहण किया है तो थाली मेरी वहां जाएगी, धोएगा दूसरा आदमी, धोने को भी तैयार नहीं, रख देंगे। अब तो थालियों का सिस्टम खत्म हो गया है, पत्तल आ गया है, बट पहले आप रिमेम्बर करिए, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले क्या होता था? हर व्यक्ति अपनी थाली धोता था क्या? क्या जो व्यक्ति ने प्रसाद पाया कहता था कि मुझे अपनी थाली धोए, 2-4 थालियां और धोके जाना है, वो थाली रख देता था, और एक टीम जो है 5-6 लोगों की, यंग लोगों की, पीछे बैठ थालियां धोती थी, बैठ के रात 12-1 बजे तक। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। अब याद करके देखिए, जितने पुराने आने वाले सबको याद आ जाएगा, होता था कि नहीं होता था? एक सिंपल प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो नहीं करते। इतना जो है भगवान के दिए आदेश, जो धार्मिक नियम है, उनका पालन नहीं करते तो हम लोगों के धाम जाने की कितनी गुंजाइश है? क्या हम जा पाएंगे? क्या हमें जो है, हम सोचें कि हाँ हाँ हम पहुंच जाएंगे वहां पर, मैं बड़ी सेवा करता हूं, मैं बड़ी माला जप करता हूं, बड़ी पूजा करता हूं, मैं बड़ा शुद्ध भक्त हूं। अरे तू सामने वाले से हरे कृष्णा तो कर नहीं रहा, शुद्धता तेरे में काय की है? शुद्धता तभी है ना जब तेरे हृदय में वैर ना हो, तेरे में ईर्ष्या ना हो, तेरे में घृणा ना हो। यही तो भगवान ने कहा, यह सर्वर्थ अनभि स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि बुद्धि स्थिर नहीं तुम्हारी, बुद्धि किसकी स्थिर है? जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता। हम लोग जो है एक क्षण के अंदर विचलित हो जाते हैं, ऐसा विचलित होते हैं। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक है, निकाल के देख लीजिएगा। हम लोग जो है एक क्षण में विचलित हो जाते हैं। तो यहां पर जो है भगवान बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। और धार्मिक नियम क्या है? मेरे द्वारा बताए गए आदेश। धार्मिक नियमों का पालन कैसे होगा? कि आपको धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य करना है, और प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य है सेवा। सेवा भगवान की, सेवा वरिष्ठ वैष्णवों की, सेवा गुरुजनों की, सेवा दीक्षा गुरु की, सेवा शिक्षा गुरु की, सेवा पथ प्रदर्शक गुरु की। अर्थात आपको सेवा में लगना है, और वो सेवा में लगने का अर्थ यह है कि आपको आदेश का पालन करना है, जो कि हम करते नहीं क्योंकि हमारे मन में अभी तक कलमश, हम अभी तो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है। अब यहां पे चर्चा आ रही है कि मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब लोग चातुर्वर्ण प्रणाली का पालन करते हो। तो चातुर्वर्ण प्रणाली क्या है? व्हाट इज चार वर्ण? चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। चार वर्णों का जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप कैसे किसी को बोलेंगे कि आप चार कौन से वर्ण में हैं? या दो बातें बड़ी मुख्य तौर पे उभर के आती हैं, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, मैंने क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, मैंने वैश्य घर में जन्म लिया है, मैंने शूद्र घर में जन्म लिया है। एक तो ये है, और दूसरा है कि क्या ब्राह्मण घर में जन्म लेके मैं ब्राह्मण हूं, क्या क्षत्रिय घर में जन्म लेके मैं क्षत्रिय हूं, क्या वैश्य घर में जन्म लेके मैं वैश्य हूं, क्या शूद्र घर में जन्म लेके मैं शूद्र हूं? व्हाट इज द कंडीशन? नंबर एक। और नंबर दो, जब चार प्रणालियां डिस्ट्रीब्यूट करी गई या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो क्या वो केवल मनुष्यों में है या बाकी जीवों में भी है? क्या चारों प्रणालियां जो हैं वो केवल मनुष्यों में है या बाकी जीवों में भी हैं? आप पक्षी देखते हो, आपको कबूतर में और बाज में कोई फर्क दिखाई देता है? जब शास्त्र पढ़ेंगे तो डिफरेंस है। देखने में तो दोनों पक्षी हैं, दोनों फड़फड़ा रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं। आपको गाय में और शेर में कोई फर्क दिखाई देता है? अंतर है। तो ये जो है वर्ण का अंतर है, इसको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है। जब आप शास्त्र के अंदर जाएंगे तो आपको बताएंगे, आप कौवा आता है तो उसको आप दाना भी नहीं डालना चाहते, और कबूतर को बुला बुला के खिलाते हो। खिलाते हो नहीं खिलाते हो? ये कौवा शूद्र है, चील वैश्य है, बाज क्षत्रिय है, और कबूतर ब्राह्मण वर्ण में है, सॉफ्ट है। दिस डिफरेंस इज देयर। आप पेड़ देखते हो, पीपल की पूजा करते हो, कीकर की करते हो क्या? बबूल की करते हो, नीम की करते हो, इमली की करते हो, आंवले की करते हो? दिस अ डिफरेंशिएशन। ऐसी डिफरेंशिएशन जो हम ह्यूमंस में लेते हैं, मनुष्यों में लेते हैं, व्यक्तियों में लेते हैं, तो उसमें जो है आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं। आज के युग में देखेंगे तो परिवार में हमें कुछ खास बात नहीं दिखाई दे रही, जैसे ये है ऐसे ये है, फर्क कोई है नहीं। बट इफ यू सी द एंसेस्ट्रल ओरिजिन, आज से हजारों साल पहले जिस पीढ़ी से हम लोग आ रहे हैं, भारद्वाज मुनि से आ रहे हैं, अंगरा मुनि से आ रहे हैं, गौतम मुनि से आ रहे हैं, जिनसे हमारा जो है पेडिग्री आ रही है, अगर उनका लेवल देखेंगे तो उस परिवार में जन्म लेना एक बड़े सौभाग्य की बात है। उसमें जन्म लेना एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप आपको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, या क्षत्रिय के घर में जन्म मिला, या वैश्य के घर में जन्म मिला, या शूद्र के घर में जन्म मिला। पर भगवान हम कलयुग की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं ना द्वापर के अंत में, तो किसके लिए दे रहे हैं? कलयुग के लिए दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? गुण कर्म विभागशा, कि प्रकृति के गुणों किस गुण के अंतर्गत है, क्या कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसका विभाग डिसाइड किया जाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के स्वरूप है, परंतु यहां कार्य क्या कर रहा है। ब्राह्मण अगर जो है बिजनेस कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा, एज पर भगवद गीता, एज पर शास्त्र। अगर ब्राह्मण जो है सेवा में है, नौकरी में है, सेवा में है, तो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। इसलिए कहा है कि कलयुग में सारे ही शूद्र हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में संलग्न है, और सेवा ऐसी है जैसे कि शूद्र सेवा करता। शूद्र का कार्य क्या है? ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा। आज की डेट के अंदर जो शूद्र हैं, जिसको इसने पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप शूद्र घर में जन्म लिया है, वो सेवा किसकी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर है। बट फॉर टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आपके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज को इनकल्टेट करना है, जो कि आती नहीं, वो इफेक्ट पीछे का रहता है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सारी समस्याओं की जड़ है। यू डोंट चेंज यूर सेल्फ, अब अपने आप में बदलाव नहीं ला पाते। आप लाख जतन कर लो, आप डॉग को घर में पाल लीजिए, आप उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, आपने उसको हमेशा मीट से दूर रखा है, कभी आप उसको जो है मैदान में ले जाइएगा जहां पर कि आपको कबूतर दिखाई दे तो कबूतर के पीछे भाग लेगा वो, ही विल लाइक टू किल एंड ईट। आप ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल। आपने उसे कभी मांस नहीं खिलाया, आपने उसे कभी भी कोई नॉन वेजिटेरियन चीज नहीं खिलाई, पर जैसे ही उसके सामने मीट आएगा उसके ऊपर झपट पड़ेगा। तो वो जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक क्वालिटी है, वो नहीं जाती है, वो नहीं जाती है, वो प्रस्फुटित हो जाती है, वो निकल के बाहर आ जाती है, एकदम सडनली निकल के बाहर आ जाती है। अब उस गुण में और उस कर्म में जो गुण है प्रकृति, जो तीन गुण जिसके अंदर वो कार्य कर रहा था, जिसके अंदर उसने अपनी नेचर डेवलप करी है, स्वभाव डेवलप किया है, सब कुछ डेवलप किया है, उसका इफेक्ट जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी वो फिर भी रहती है। परंतु जब आप धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, जब आप जो है वैदिक शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करते हैं, एंड यू हैव ए स्ट्रांग फेथ इन कृष्णा, जब आपका भगवान के प्रति, या प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, सेंटेंस पढ़ता हूं आपके लिए। जिस सभ्यता में लोग ये नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो, किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर रहा जाए, जब तक आपका भगवान में स्ट्रांग फेथ नहीं होगा कि आप कृष्ण के भाव में नहीं आएंगे, कृष्ण के भाव में आएंगे तभी कंटेमिनेशन जाएगी, तभी मन का मैल जाएगा, तभी आप जो है समझेंगे कृष्ण का भाव वो ये चाहते हैं मेरे से, वो मेरे से ये उनकी डिजायर है। क्या डिजायर है? कि भाई जो मैंने आदेश दिए हैं उनका पालन करते हुए मेरे घर वापस आ जा। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं? व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू? मैंने तुझे गुरु दिया, साधु दिया, शास्त्र दिया, तीनों चीजें दी, किस लिए दी? व्हाई डिड आई गिव दिस? शास्त्र दिया तेरे को, गुरु दे दिया, साधु दे दिया संग करने के लिए, गुरु दे दिया ज्ञान को सिखाने के लिए, और शास्त्र दिया ज्ञान का भंडार किस लिए दिया, व्हाट फॉर, कि तू इन तीनों का इस्तेमाल करके अपने आप को वापस जहां से गया था उसी स्थान पर ले आए, अर्थात मेरे धाम में आ जाए, मेरे संग रहे, मेरे अंग रहे, मैं तेरे साथ आनंद लेना चाहता हूं। अब तू अपना आनंद खुद ले रहा है, मैं ठीक है एज ए प्रेरणा देने के लिए तेरे हृदय में विराजमान हूं, परंतु क्या तू मेरी बात मानता है, किसकी बात मानता है तू, मन की बात मानता है। तेरी बुद्धि में डिस्क्रिमिनेटरी पावर खत्म हो जाती है, कब होती है, जब मन किसी विचरणशील इंद्रिय पे लग जाता है, दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। जैसे पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहाकर दूर ले जाती है, उसी तरह मन किसी विचरणशील इंद्रिय पे जब लग जाता है तो बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि नष्ट कर देता है। इस वक्त तेरी बुद्धि नष्ट हुई पड़ी है, क्योंकि तू अपने मन की बात सुन रहा है। जिस दिन मेरी बात सुनेगा उसके लिए मैंने तेरे को जो है संग दिया है, साधु के रूप में शास्त्र दिया है, ज्ञान का भंडार, और गुरु दिया है शास्त्र को समझने के लिए। उन तीनों का संग करके, तीनों को इस्तेमाल करके तेरे को मेरे धाम में आना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए, अर्थात तेरे को अल्टीमेटली कृष्ण के भाव में आना है। जब हम कृष्ण के भाव की बात करते हैं तो स्टार्ट होती है यहां से, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति एंड भाव, आठवां स्टेप जाता है। हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरा आपके प्रति दो प्रकार का भाव हो सकता है, या प्रेम का या वैर का। अगर मैं आपसे मुस्कुरा के हंस के हरे कृष्णा करता हूं तो मेरा आपका प्रति प्रेम का भाव है, आई लाइक यू है, बड़ा मजा आता है आपसे बात, चाहे एक सेकंड के लिए बात होती है, आई लव यू। पर अगर मैं आपसे जो है धार्मिक नियम का पालन ही नहीं करता, हरे कृष्णा तक नहीं करता और मुंह टेढ़ा करके निकल जाता हूं, उसका मतलब मेरा आपके प्रति वैर का भाव है। इसी तरह कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम का भाव है या वैर का भाव है। प्रेम का भाव है तो भगवान के आदेश का पालन करूंगा, वैर का भाव है तो आदेश का पालन नहीं करूंगा, तो धार्मिक नियम फेल होगा। जब भगवान के प्रति भाव ही नहीं होगा तो हम कृष्ण भावनामृत में अग्रसर ही नहीं होंगे, तो आप कितना भी तरक्की कर लो आप जीरो के जीरो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। भौतिक प्रोग्रेस है, इतना बड़ा इतना मोटा फोन आया करता था नोकिया कंपनी का, याद है ना मुकेश जी, याद होगा आपको, महावीर प्रभु शुरू में 95 के अंदर उसको जो है संभालना मुश्किल होता था, कैसे संभाला जाए, कैसे जेब में डाला जाए, तो क्लिप बन गए थे बेल्ट में टांगने के लिए। आज फोन छोटा सा भी है, पर्पस सॉल्व कर रहा है, तरक्की हो गई, आईफोन आ गया है और नए मॉडल आ जाएंगे, टैबलेट आ गई, लैपटॉप से अब टैबलेट में आ गए, तरक्की हो रही है भौतिक संसार में, आपको एंजॉय करने की फैसिलिटी मिल रही है। अब आपको फोटो देखनी है, पिक्चर देखनी है तो टेलीफोन में ही देख लेते हो आप इंटरनेट के थ्रू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कार में बैठे हैं, ड्राइविंग हो रही है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप अपना उसके ऊपर जो है पिक्चर देख रहे हैं। बट आध्यात्मिक जीवन में क्या तरक्की हो रही है, क्या हम जो है धर्म के प्रति जागरूक हैं कि हमें क्या कार्य का, लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं जागरूक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, धर्म मजहब है, दिस आर द पैथ, ये भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं, धर्म केवल एक है। धर्म क्या है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रीतम, सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त करना, चाहे मार्ग कोई भी हो, चाहे सिस्टम कोई भी हो, चाहे आप किसी भी पाथ से वहां तक पहुंच जाए, आपका कार्य एक ही है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो यहां कह रहे हैं प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट, जो इस वैदिक नियमों से विहीन है अर्थात इनका पालन नहीं करता, जो भगवान के मार्ग को उनके दिए आदेश को अंडरस्टैंड नहीं करता, उस पर नहीं चलता, उसका पांचवा वर्ण है। चार वर्ण तो भगवान ने दिए और एक पंचम वर्ण और अरेंज हो गया कि जो इन चारों वर्णों में नहीं आता कि चारों वर्णों के अंदर आपको भगवान के आदेश का पालन करना है। यहां बात आई है धर्मम तेना परम विधु, ऐसा समाज ना तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है ना ही श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से, और आज की डेट में समाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब पंचम वर्ण में है, चारों वर्णों में कोई भी नहीं आता। आप देख लीजिएगा, आप टेस्ट करिएगा, एक एक करके इंटरव्यू लीजिएगा, पता लगेगा सारे के सारे पंचम वर्ण में। नोबडी अंडरस्टैंड्स कि भगवान ने क्या आदेश दिए हैं और हमें उनका पालन कैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।